मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 8 मई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान मित्र का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन दोस्त का नाम है रमेश कुमार, आप बलिया उत्तर प्रदेश से हैं। फ्रेंड्स, आज कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिसको आधार बना करके हम कुछ चर्चा कर सकें। छोटी छोटी न्यूज हैं लेकिन मैं आज उन्हें जानबूझ करके अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि मैंने निश्चय किया है कि आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर थोड़े विस्तार के साथ आप सबसे बातें करूं। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि हमारी जो संसद है उसका स्वरूप क्या होता जा रहा है, खासकर अभी के चुनाव के संदर्भ को देखते हुए। मित्रों, अभी जो चुनाव हो रहे हैं आप उनका जायजा ले रहे हैं, ध्यान से उन्हें देख रहे हैं। इस चुनाव के जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो खासकर दिमाग को एक तरह से विचलित करते हैं, जो भी राजनीतिक थोड़ी सी दृष्टि रखते हैं, समझ रखते हैं और इसके बारे में चिंतनशील भी हैं, वो इस बात को लेकर के इस बार दंग है कि जो चुनाव है उसकी भाषा क्या हो गई है। मैं भाषा पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाषा पर बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सांसदों पर जो जाकर के हमारे संसद के चरित्र का निर्धारण करेंगे। आपको याद होगा कल मैंने इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ बातें की थी, आपको एक करंट कंटेंट के तहत आर्टिकल भी प्रोवाइड किया गया है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह सा खड़ा होता जा रहा है। सोच करके देखिए कि अगर इलेक्शन कमीशन पर ही लोगों का विश्वास कम होता चला गया तो फिर जो हमारे सांसद चुनकर आ रहे हैं उनके प्रति जनता के विश्वास की स्थिति क्या होगी। अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है, यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि अभी भी जो राजनेता हैं उनके प्रति जनता के मन में उतना विश्वास नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है, जबकि होना चाहिए क्योंकि हमने उनको चुना है, वो जबरदस्ती नहीं आए हैं, हमने उनको चुना है, अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। तो हम जिस भी प्रतिनिधि को चुनते हैं कहीं न कहीं वो हमारे व्यक्तित्व का, हमारे विचारों का और हमारी आकांक्षाओं का ही प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वह संसद हो या फिर वह विधानसभा ही क्यों न हो। अब आप देखिए कि जब लोकतंत्र की व्यवस्था की गई थी तो लोकतंत्र से क्या अपेक्षा की गई थी, और धीरे धीरे इतने सालों के सफर के बाद हमारा लोकतंत्र किधर जा रहा है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न कभी कभी बाकायदे मेंस में पूछ लिए जाते हैं। मैं गांधी जी का आपको एक उदाहरण देता हूं कि गांधी जी ने क्या कहा था। गांधी जी ने कहा था, मेरे लिए लोकतंत्र का मतलब है कि सबसे कमजोर व्यक्ति को भी उतने ही अवसर मिलें जितने कि सबसे ताकतवर व्यक्ति को। मुझे लगता है कि ये कोट आपको लिख लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, ये आपके बहुत काम आएगा उत्तर लिखने में भी और निबंध लेखन में भी। मैं इसे रिपीट कर रहा हूं, मेरे लिए लोकतंत्र का मतलब है कि सबसे कमजोर व्यक्ति को भी, याद रखिए, सबसे कमजोर व्यक्ति को भी उतने ही अवसर मिले जितने कि सबसे ताकतवर व्यक्ति को। राइट, ये गांधी जी की परिकल्पना थी, ये लोकतंत्र का मतलब है उनके लिए। यहां देखिए कि हम जनरली लोकतंत्र के बारे में जो अपने लिंकन साहब की परिभाषा पढ़ते हैं कि जनता के लिए जनता के द्वारा, ये पढ़ते हैं ना, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा, उससे अलग हटकर के ये बात कह रहे हैं। वो जनता को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जनता में कौन, कि सबसे कमजोर व्यक्ति है उसको भी उतने ही अवसर मिले। मित्रों, आप ये बताइए कि इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं, इससे पहली बार जो इससे पहले जो चुनाव हो चुके हैं, क्या उसमें आपको गांधी जी के इन सपनों का साकार स्वरूप कहीं देखने को मिल रहा है? अपवाद स्वरूप कोई बात हो तो अलग है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी देखिए, जिन सबको टिकट दिया गया है उनके नाम अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, खासकर अगर आप उनको उनकी आय से जोड़कर देखेंगे तो। अखबारों में बकायदे छप रहे हैं कि इनकी संपत्ति कितनी है, इनकी सालाना आय कितनी है, और उससे भी दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि जिन लोगों को टिकट दिया जा गया है, चलिए हम आपराधिक पृष्ठभूमि की बात भी यहां नहीं कर रहे हैं, चलिए हम उनकी संपत्ति की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात इस बात की कर रहे हैं कि क्या उनके पास नेतृत्व का ज्ञान है, अनुभव है, क्या उन्होंने सच में ग्राउंड लेवल पर राजनीति के क्षेत्र में कुछ काम किया है या सामाजिक क्षेत्र में कुछ काम किया है, क्या उन्हें सही में जिस संसदीय क्षेत्र से वे खड़े हो रहे हैं उन संसदीय क्षेत्रों की कोई जानकारी है, वहां की जरूरतों को वो जानते हैं, वहां के लोगों को जानते हैं, क्योंकि प्रतिनिधित्व तो उन्हें उन्हीं क्षेत्रों का करना है। तो देखिए, व्यावहारिक तौर पर आप कह सकते हैं कि ठीक है, जब चुन करके आ जाएंगे, बनेंगे, तब घूम करके पता कर लेंगे, लोग उनसे मिलेंगे तो सारी जानकारियां हो जाएंगी। मित्रों, ये लोकतंत्र नहीं है। सच्चा लोकतंत्र तो यही है कि आप अपने लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, वहां की समस्याओं को जानते हो, तभी आप उसे संसद में उठा पाएंगे। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हो रहा है कि अब बहुत से सांसद ऐसे हो गए हैं जिन्हें जब बहस के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वो सीधे सीधे ये कह देते हैं कि बहस में मेरा विश्वास नहीं है। अगर बहस में विश्वास नहीं है तो संसद या विधानसभा में जाकर के आपको करना क्या है? बहस ही तो करनी है, वो तो बहस के मंच है, और उस बहस पर आपका विश्वास नहीं है। और अगर बहस पर विश्वास नहीं है तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर ही विश्वास नहीं है। मित्रों, पिछली बार की जो हमारी लोकसभा है, मैं उसके लिए आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं। उस लोकसभा के लिए ये आंकड़ा दिया एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और अक्सर आपको इनके द्वारा दिए गए आंकड़े पढ़ने को मिल जाते होंगे। ये पिछली लोकसभा के आंकड़े हैं। डेफिनेटली अभी जब हमारा लोकसभा का चुनाव संपन्न हो जाएगा तो वो फिर से आंकड़े देगी, और इस पुराने आंकड़े को आप नए आंकड़े से रिप्लेस कर दीजिएगा। इसके बारे में मैं अभी से आपको सतर्क कर रहा हूं, लेकिन फिर भी इस पुराने आंकड़े से एक झलक हमें मिलती है। और वो झलक क्या है कि जो 2014 की जो लोकसभा है, आप देखिए हमारे लोकसभा में कितने सांसद होते हैं, 543। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि उन 543 सांसदों में से 430 यानी कि टोटल का लगभग 83% सांसद ऐसे थे जो करोड़पति थे। 83% सांसद करोड़पति थे। अब उस करोड़ में कितने करोड़पति हैं उसे बात को आप छोड़ दीजिए, लेकिन इनमें से प्रत्येक व्यक्ति करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति का मालिक है। चलिए हम इसको किनारे करते हैं। अब हमारे पास अब तक का दूसरा आंकड़ा है जो अभी चुनाव हो रहे हैं उनके बारे में। फ्रेंड्स, अभी तक मोटे तौर पर 425 लोकसभा सीट के लिए मतदान हो चुके हैं, 425। और न्यूज में आपने सुने होगी कि मतलब मोटे तौर पर मैं बता रहा हूं कि अभी तक लगभग 3000 करोड़ रुपए केवल कैश नहीं, नहीं बल्कि सामान के रूप में, शराब के रूप में और दूसरी चीजों के रूप में जब्त किए जा चुके हैं 3000 करोड़ रुपए। मोटे तौर पर इसे जितने क्षेत्रों में मतदान हो चुका है अगर उससे डिवाइड करेंगे तो मोटे तौर पर आपको एक आंकड़ा मिलेगा कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से 7 करोड़ रुपए जब्त किए गए। 7 करोड़ रुपए ये मतदाताओं को देने के लिए, रिझाने के लिए, इन सब कामों के लिए थे। इसका मतलब है कि अगर अभी आपको चुनाव लड़ना हो तो 7 करोड़ रुपए तो सिर्फ इस केस के लिए चाहिए जो पकड़े गए हैं, और जो नहीं पकड़े गए हैं और जिनका बंटवारा हो चुका है, जो बांट दिए गए हैं, उसके बारे में हम नहीं जान सकते, उसका कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। तो अगर वस्तु स्थिति यह है तो अब आप गांधी जी की परिभाषा को इस पर लागू करने की कोशिश कीजिए कि मेरे लिए लोकतंत्र का मतलब है कि सबसे कमजोर व्यक्ति को भी उतने ही अवसर मिले जितने की सबसे ताकतवर व्यक्ति को। तो भारत का जो लोकतंत्र है अब धीरे धीरे, अगर हम अब्राहम लिंकन की परिभाषा को लेकर के चले तो कुछ इस तरह का होते जा रहा है कि लोगों के लिए, कुछ लोगों के द्वारा शासन होता लोगों के लिए है, लेकिन ये कुछ लोगों के द्वारा एक प्रकार से रिजर्व हो गया है। देखिए, जब पहली बार 1952 में जब चुनाव हुए थे उस समय एक स्थिति थी कि जो आरक्षित सीटें थीं, कम से कम वहां से कमजोर वर्ग का व्यक्ति खड़ा होता था। जाति तो के आधार पर तो था ही, लेकिन वास्तव में वो आर्थिक रूप से कमजोर हुआ करता था। लेकिन डेमोक्रेसी के इतने साल की यात्रा के बाद अब वह वर्ग भी उतना कमजोर नहीं रह गया, और खासकर जो उस समय से चुनाव लड़ता आ रहा है वह तो कमजोर रह ही नहीं गया है। तो सच पूछे तो जो आरक्षित सीटें थी वहां से आए हुए लोगों में आप एक कमजोर वर्ग की झलक देखकर थोड़ा सा इस बारे में सुकून हासिल कर सकते थे कि नहीं, हमारी संसद में ऐसे लोगों के लिए भी जगह है। वह सुकून भी अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और यह कम खतरनाक बात नहीं है, क्योंकि अगर संसद में ये धनी वर्ग के लोग ही पहुंचते रहेंगे तो आपको नहीं लगता है कि पूरे की पूरी हमारी संसद की का जो एक लोकतांत्रिक चरित्र है वो लोकतांत्रिक चरित्र खत्म हो जाएगा? क्योंकि लोकतांत्रिक चरित्र का मतलब क्या है, अगर धन के हिसाब से देखें तो सभी तरह के लोग वहां पहुंचे, क्षेत्र के हिसाब से तो खैर आते ही हैं, भाषा के हिसाब से भी आ जाते हैं, लेकिन प्रोफेशन के हिसाब से नहीं आते, प्रोफेशन के हिसाब से भी वहां हर तरह के लोग आने चाहिए, जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और पूरा का पूरा देश एक प्रकार से एक विचित्र किस्म के पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है, या कह लीजिए कि जिसे हम याराना पूंजीवाद कहते हैं उधर बढ़ रहा है। क्योंकि जब लोकतंत्र में ही पूंजीवाद हावी हो जाएगा तो अब सोच करके देखिए कि ये जो पूंजीपति वर्ग है या जो करोड़पति वर्ग है, जो अरबपति वर्ग है, वो किन के हित में काम करेगा। और वैसे ही इससे पहले ही याराना पूंजीवाद के तहत भारत में ये आशंका व्यक्त की जा रही है, चिंता व्यक्त की जा रही है कि क्या हो रहा है राजनेताओं के बीच में, उद्योगपति या धनी वर्ग के बीच में, और फिर नौकरशाहों के बीच में, इनके बीच में एक बड़ा विचित्र किस्म का अपवित्र गठबंधन तैयार हो गया है। मतलब पूरा का पूरा देश इनकी जकड़ में आ गया है, इनकी पकड़ में आ गया है, फिर चाहे वो कोई नीति बने, चाहे कोई और दूसरे संस्थान हो, उन पर यही हावी हैं, और ये संस्थानों का इस्तेमाल अपने ही हित के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही हम खतरनाक स्थिति तक पहुंच गए हैं। इसके बारे में मैं फिलहाल इतना ही बात करूंगा। एक बात आपके ध्यान में मैं और लाना चाहूंगा, जो आपको बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलेगी दोस्तों, और मैं चाहूंगा कि इसे आप नोट कर लें। ब्रिटेन में अभी एक कानून बनाया गया है, ब्रिटेन, हमने तो ब्रिटेन और अमेरिका से ही पैटर्न लिया है ज्यादातर। ब्रिटेन का जो कानून है वो है द रिकॉल एमपी एक्ट 2015, नाम बहुत सरल है, द रिकॉल एमपी एक्ट 2015। वहां एक ऐसा कानून बनाया गया है कि अगर किसी सांसद को वापस बुलाना है तो उसे वापस बुलाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोविजंस किए गए हैं कि किस तरह के सांसदों को आप वापस बुला सकते हैं। पहला तो यह है कि अगर उस सांसद को 12 महीने की कैद की सजा या उससे कम भी कैद की या उससे अधिक की कैद की सजा है तब आप उसे वापस बुला सकते हैं। जब सांसद सदन से 10 दिन से अधिक समय के लिए निलंबित कर दिया गया हो, 10 दिन से अधिक निलंबित कर दिया हो, इसका मतलब है कि वो सांसद बनने लायक नहीं है। लेकिन अब देखिए जो तीसरा पॉइंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कि यदि सांसद ने अपने सांसद होने की कीमत पर कि मैं सांसद हूं किसी कानून को तोड़ा हो तब आप उसे रिकॉल कर सकते हैं। और रिकॉल करने की प्रक्रिया क्या है? बहुत सरल प्रक्रिया है। रिकॉल करने की प्रक्रिया है कि उस सांसद के मतदाताओं में से यदि 10% लोग रिकॉल के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो उस सांसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी, केवल 10%। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 10 दिन से अधिक सदन से निलंबित, यानी कि आप सदन के अनुशासन का पालन कीजिए। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सांसद होने की कीमत पर अगर आपने किसी कानून को तोड़ा हो, मुझे लगता है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिखने में काम आएगा। मित्रों, आज के प्रेस क्लिपिंग में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिपिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, जो डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का है, शतरंज के प्यादे न बने सांसद। इसमें उन्होंने खासकर व्हीप की प्रक्रिया के बारे में लिखा है कि भारत की कैसी व्हीप की प्रक्रिया है, इंग्लैंड और अमेरिका की कैसी है, और भारत में क्या होना चाहिए, व्हीप की इस प्रक्रिया का से किस प्रकार जो हमारे जो सांसद हैं, हमारे जो विधायक हैं, उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनका हनन होता है। इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य मिलेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से एक का नाम है अनुपमा शुक्ला, आपका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।